नमस्कार भारत, 17 अप्रैल बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। फ्रांस के राष्ट्रपति का वादा, 5 साल में पहले से भी सुंदर बनाएंगे नोट्रेडाम गिरजाघर।
L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais. Et que nous aurons...
इलाहाबाद में क्यों चिराग लेकर उम्मीदवार खोज रही है कांग्रेस?
संगठन इतना कमजोर है इनका, संगठन में कोई दम नहीं है। जिनको जिनको लड़ाने की बात करते हैं यार, वो लोग मना कर दे रहे हैं, वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं लड़ने को।
और सुनवाएंगे विश्लेषण, मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश रोकने पर क्या कहता है इस्लाम?
कहीं कुरान में एक लफ्ज नहीं लिखा कि औरतें मस्जिद में नहीं जाएं। बिल्कुल आजादी है, वो मस्जिद में जाएं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ें।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वादा किया है कि नोट्र-डेम गिरजाघर आने वाले 5 सालों में दोबारा बनकर खड़ा हो जाएगा, और इतना ही नहीं, ये पहले से कहीं अधिक खूबसूरत होगा। एक टीवी संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि गिरजाघर में लगी आग से दुखी हर एक सदस्य के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने आग को काबू में करने वाले दमकल कर्मियों की तारीफ की। अधिकारियों का मानना है कि कुछ ही मिनट में आग पूरे गिरजाघर में फैल गई और विकराल रूप ले लिया। गिरजाघर में मौजूद बेशकीमती चीजों को समय रहते निकाल लिया गया था। हालांकि आग किस वजह से लगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मिस्र की संसद ने उस संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि वो साल 2030 तक सत्ता पर काबिज रहें। एक अन्य संशोधन में जो उन्हें न्यायपालिका से भी अधिक प्रभावी बनाएगा, उसे भी पारित किया गया है। जल्द ही इन बदलावों को देश के समक्ष रखा जाएगा। सीसी के समर्थकों का कहना है कि उन्हें कुछ और वक्त देना चाहिए ताकि वो बड़े आर्थिक बदलावों के काम को पूरा कर सकें, लेकिन उनके विरोधियों ने इस पर आपत्ति जताई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से वेनेजुएला में भेजी गई राहत सामग्री की पहली किश्त पहुंच गई है। इसमें दवाइयां हैं और जनरेटर हैं। ये सारी चीजें देश भर में मौजूद अस्पतालों को भेजी जाएंगी। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो वेनेजुएला के लिए राहत सामग्री लेने के लिए तैयार हो गए थे। आर्थिक अव्यवस्था के चलते देश में खाने पीने की कमी हो गई है, दवाइयों की कमी हो गई है और दूसरी मूलभूत चीजों की भी कमी हो गई है। हालांकि मादुरो इससे पहले किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने से मना करते आए थे। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने का मतलब हुआ अमेरिका को खुद पर हावी होने देने का पहला कदम उठाना। पाकिस्तान के पिशावर के एक रिहायशी इलाके में सुरक्षा कर्मियों और चरमपंथियों के बीच संघर्ष की खबर है। ये संघर्ष 17 घंटे तक चला। रात भर चले इस ऑपरेशन में 5 चरमपंथी और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस और सेना ने चरमपंथियों के उस ठिकाने को निशाना बनाया था जिसका इस्तेमाल वो सेना पर हमले के लिए किया करते थे। अभी तक चरमपंथियों की पहचान नहीं हो सकी है और न ही ये स्पष्ट हो सका है कि वो किस संगठन से थे। पेशावर के बम निरोधी दस्ते के प्रमुख शफकत मलिक का कहना है कि इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में स्थानीय लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। उन्होंने बताया,
लोकल पब्लिक ने और जो सिटीजन है उन्होंने बहुत तावन किया, मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके तावन की वजह से ये सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी डिवाइस लगाई थी बूबी ट्रैपिंग के लिए, तो वो थी तकरीबन 50 से 60 kg, वो बूबी ट्रैपिंग थी, यानी ऊपर दिखा रहे थोड़ा सा। हमने उसको इनिशिएटर दिया सिर्फ 250 ग्राम का छोटा सा, हमने प्रिसिशन किया कि डैमेज बहुत कम हो, अपनी तरफ से सिर्फ इनिशिएट किया है 250 ग्राम से और आपने डैमेज।
ये थे शफकत मलिक के शब्द। कम लागत वाले घरों के निर्माण के लिए कीनिया में अब लोगों को एक और टैक्स देना होगा। कीनिया में अधिकारियों द्वारा लिए गए इस फैसले को लोग नाराजगी से देख रहे हैं। सरकार की रणनीति साल 2022 तक 5 लाख किफायती घर बनाने की है। एक ओर जहां देश में इससे कहीं अधिक किफायती घरों की जरूरत है, वहीं अफ्रीका में कीनिया एकमात्र ऐसा देश है जो इतने अधिक दर से कर देता है। कीनिया के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण देश का कोष खाली होता जा रहा है और उनसे टैक्स के रूप में धन वसूला जा रहा है।
The government of Jubilee is overburdening Kenyans with a lot of taxes.
सरकार आम लोगों पर कर लगाकर उन पर बोझ बढ़ाती ही जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की ही वजह से हो रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वादा किया है कि आग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई नोट्रे डाम गिरजाघर की इमारत को 5 साल के भीतर दोबारा पहले से भी खूबसूरत बनाया जाएगा। 850 साल पुराने इस गिरजाघर में कल आग लगने से इसका शिखर ध्वस्त हो गया था। फ्रांस के उप गृह मंत्री ने कहा है कि दमकल कर्मियों ने इस गिरजाघर को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। ब्यौरा सुनिए भूमिका राय से।
आठ सौ पचास साल पुरानी वो इमारत जल रही थी और सारा शहर उसे आंखों में आंसू लिए देख रहा था। वो इमारत किसी का घर नहीं थी, लेकिन आस्था का केंद्र था और उस शहर की पहचान भी। पेरिस का मशहूर नोट्र डैम गिरजाघर सोमवार को आग की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोग अब भी सदमे में हैं, दुखी हैं। पेरिस में कई जगहों पर लोगों ने प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया। एक छोटी सी लपट से ये सब शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी इमारत धुएं के गुबार में ढक गई। आग जितनी जल्दी फैली, उतनी ही तेजी इसे बुझाने वालों ने भी दिखाई। शहर के इस सबसे प्रमुख गिरजाघर को बचाने के दौरान वो 15 से 20 मिनट का वक्त सबसे अहम रहा। फ्रांस के गृह मंत्री ने अग्निशमन दल के कर्मचारियों के काम और लगन की तारीफ करते हुए कहा, बिना संवेदनशील हुए, बिना भारी शब्दों के, बिना आंखों में आंसू लाए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरे देश को एक साथ खड़े होकर किसी मुश्किल घड़ी का सामना करते हुए देखना वाकई गौरव की बात है। मैं उन 500 दमकल कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। हालांकि गिरजाघर में लगी आग इतनी भयानक थी कि इसका गुंबद पूरी तरह नष्ट हो गया, पर अभी तक ये स्पष्ट ही नहीं हो सका है कि आग लगी किस वजह से थी। कई लोगों का मानना है कि आग गिरजाघर में चल रहे नवीनीकरण के काम की वजह से लगी, लेकिन नवीनीकरण का ठेका जिस कंपनी को दिया गया था उसके सुपरवाइजर का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी और शख्स से अधिक हमें ये जानने की जल्दी है कि आग लगी कैसे, क्योंकि जिस समय आग लगी उस समय हम में से कोई भी आग से जुड़ा कोई काम नहीं कर रहा था। आग जिस वजह से लगी इसका पता लगाने के लिए 50 लोगों की एक टीम का भी गठन किया गया है। वहीं चिंता अब सिर्फ इस बात की है कि अब इस इमारत को दोबारा कैसे खड़ा किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस काम में कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगेगा, लेकिन देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वादा किया है कि वो इस गिरजाघर को 5 सालों में दोबारा खड़ा कर देंगे। हम ये काम 5 सालों में पूरा कर लेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ये बनकर तैयार होगा तो इतना खूबसूरत होगा जितना पहले कभी भी नहीं था। आग बुझाने के बाद घटनास्थल पर पहुंची आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने बहुत सी कीमती चीजों को बचा लिया है। इनमें से कुछ धार्मिक चीजें भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन कीमती चीजों में वो कांटों वाला मुकुट भी शामिल है जो ईसा मसीह को सूली पर लटकाने से पहले पहनाया गया था। इस गिरजाघर में लगी आग ने सिर्फ पेरिस या फ्रांस के लोगों को विचलित नहीं किया है, दुनिया भर के तमाम देशों ने फ्रांस को अपनी तरफ से मदद का प्रस्ताव दिया है, जिसमें रूस, स्पेन और ब्रिटेन सबसे आगे हैं।
भूमिका राय से ब्यौरा सुन रहे थे आप। अब भारत की बात। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच आयकर विभाग ने कल रात डीएमके नेता कनिमोरी के तूतुकोड़ी स्थित घर पर छापा मारा, लेकिन वहां कुछ न मिलने पर अधिकारी खाली हाथ वहां से लौट गए। अब डीएमके और कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा पर आयकर विभाग के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
डीएमके नेता कनिमोली ने कल शाम जब अपना चुनावी अभियान खत्म किया तो उसी वक्त उन्हें अपने घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ने की खबर मिली, लेकिन जनगंठों में पता चला कि आयकर विभाग के अफसर वहां से निकल गए थे क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला था। दरअसल आयकर विभाग ने बताया कि उन्हें गलत खबर मिली थी कि कनिमोली के घर के पहले मंजिल पर पैसा रखा हुआ है, लेकिन छापा शुरू होते ही कनिमोली के भाई और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा कि आयकर अधिकारियों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. तमिल साई सौंदर राजन के यहाँ छापा मारना चाहिए था क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपये हैं। आयकर विभाग के इस छापे और फिर उनके खाली हाथ लौट जाने की इस घटना पर डीएम के प्रवक्ता सर्वानंद अन्नादुरई ने बीबीसी से कहा, तमिलनाडु में आयकर विभाग के अधिकारी तो हास्यास्पद बन गए हैं। वो जानबूझकर डीएमके के खिलाफ छापे मार रहे हैं कि ये तो एक बुरा मजाक बन गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों की नजर वहां नहीं जाती जहां अन्ना डीएमके के मंत्री मतदाताओं पर 2000 रुपयों के नोट फेंक रहे हैं। हमारी जानकारी ये है कि वो हमारे नेताओं पर इसलिए छापे मार रहे हैं ताकि वो पैसे रख कर ये कहें कि हमारे लोगों के पास पैसा है। उनके इस पागलपन में एक साफ पैटर्न दिखता है। ये थे सर्वानंद अन्नादुरई के शब्द। कन्नीमोली तूतुकुड़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष डॉक्टर तमिलसाई सौंदर राजन चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि डीएम के प्रवक्ता सर्वानंद का भी वही कहना था जो कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के नेता पिछले कुछ हफ्तों से आयकर विभाग के बारे में कह रहे हैं। आयकर विभाग के छापों के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, उनके कई मंत्रिमंडल के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी आयकर विभाग के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके थोड़े ही दिन बाद आयकर विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने आयकर विभाग के अधिकारियों को काम करने से रोका था। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश कालापा कहते हैं,
देखिए ये तो साजिश है। ये मोदी साहब जो है कहते आए हैं कि महामिलावट, वैसे महामिलावट जो है मोदी साहब का है। मोदी साहब जो है आजकल CBI, ID, ED ये सब जो है उनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। जैसे महिला मोर्चा होता है आजकल ID मोर्चा होता है, पहले युवा मोर्चा होता था तो आजकल जो है ED मोर्चा होता है, और कोई मोर्चा होता था तो CBI मोर्चा होता है। तो ये गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटीज को जैसे मिसयूज करना है वो मोदी साहब जो है बहुत बेहतर जानते हैं। और आप देख लेते हैं कि कर्नाटका में
दिलचस्प बात यह है कि कल रात को कन्नीमोली के घर पर छापे उस समय हुए जब वो 18 अप्रैल के चुनाव की तैयारी में मसरूफ थी और कल ही चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव रद्द कर दिया था क्योंकि वहां काफी बड़ी रकम बरामद की गई थी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
DMK और कांग्रेस की ओर से भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदर राजन पर करोड़ों की रकम रखने का आरोप लगाया गया है और सुंदराजन का पक्ष अभी इस पर सामने नहीं आया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद लोकसभा सीट किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है। इस सीट पर अब तक हुए लोकसभा के 15 आम चुनावों और 2 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा यानी 7 बार जीत दर्ज की है, लेकिन अब स्थिति यह है कि पार्टी को स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा जिसे लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सके। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद श्यामा चरण गुप्त टिकट की घोषणा से पहले ही समाजवादी पार्टी से बांदा सीट से टिकट ले बैठे, तो बीजेपी ने 2 साल पहले कांग्रेस से आईं और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद के चुनावी मैदान में उतार दिया। रीता जोशी कांग्रेस में तमाम बड़े पदों पर रहने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से उनका नाता काफी पुराना रहा है, लेकिन अब उनका कहना है कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है।
इतनी उपलब्धियां और इतना ज्यादा जनता के प्रति समर्पण मेरे परिवार का, मेरी पार्टी का और उस पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का है कि ये जीत लाखों में होनी चाहिए, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब की राहुल जी अमेठी से भी डर रहे हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है। जिन नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया उनका नेतृत्व तो बहुत ही कमजोर और जनता को स्वीकारनीय नहीं था।
इलाहाबाद में कांग्रेस का जनाधार कमजोर पहले से ही है, लेकिन रीता जोशी के बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ और लोग बीजेपी में या तो शामिल हो रहे हैं या फिर रीता जोशी के पीछे चल रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी को यहां से कोई ऐसा स्थानीय नेता नहीं मिल पा रहा है जिसे वो रीता जोशी के मुकाबले खड़ा कर सके। हालांकि इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय अवस्थी ऐसा नहीं मानते हैं।
रीता जी इतने साल तक कांग्रेस में हाईकमांड थी, प्रदेश अध्यक्ष थी, उनके साथ तमाम कांग्रेसियों ने काम किया है, मैंने भी जो है उनके साथ काम किया है, लेकिन अशोक वाजपेयी और रीता जी का बीजेपी में जाने से जिनको जिनको जाना था वो चले गए, इक्का दुक्का है जो बचे कुछ है, तो चार ही पांच नाम तो आए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा जनाधार वाला तो आदमी अब है भी नहीं। तो कांग्रेस अपने मूल मौलिक जो है स्वरूप में है, जैसी थी वैसी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस बेहतर कैंडिडेट देगी।
लेकिन स्थानीय पत्रकार अखिलेश मिश्र कहते हैं कि जमीनी सच्चाई यही है,
संगठन इतना कमजोर है इनका, संगठन में कोई दम नहीं, संगठन में अध्यक्ष छोड़ दिया जाए, उपाध्यक्ष सब चले गए, शामिल हो गए भाजपा में, जिनको जिनको ये लड़ाने की बात करते हैं वो लोग मना कर दे रहे हैं, वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं लड़ने को, ये दिक्कत हर बार इनके साथ हुई है, कोई नई बात नहीं है।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि अभी कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, इलाहाबाद सीट अकेली नहीं है, लेकिन इलाहाबाद शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासी मायूसी है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने कुछ स्थानीय नेताओं से लेकर अभिनेता संजय दत्त तक के नाम पर विचार किया है, लेकिन अभी तक कोई रुझान स्पष्ट तौर पर नहीं आ सका है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र भी कहते हैं कि कांग्रेस यहां से किसी बड़ी शख्सियत को चुनाव लड़ा सकती है।
कांग्रेस ने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं वो सारे उम्मीदवार ये बताते हैं कि कांग्रेस ने अपने लिए गठबंधन के इस दौर में अच्छे प्रत्याशी चुने हैं, तो वहां भी कांग्रेस अच्छा उम्मीदवार उतारेगी। और एक दौर में वहां से प्रियंका गांधी के लड़ने का जिक्र हुआ था, हालांकि वो जिक्र मीडिया का ही था, पर उससे लगता है कि कांग्रेस जिन जगहों पर अभी तक नहीं उतारी है इसका मतलब कि वहां कोई अच्छे कैंडिडेट को तलाश रही है। और कांग्रेस भी इस बात की कोशिश करेगी कि जिस तरह को छोड़ करके रीता बहुगुणा जोशी गई है, तो रीता बहुगुणा जोशी का स्कोर कांग्रेस कैसे वहां कम कर सकती है और उन्हें इस बात के लिए पछतावे में डाल सकती है कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए अच्छा नहीं था, कांग्रेस कोई बड़ा उम्मीदवार तलाश रही है वहां के लिए।
दरअसल इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस समय बेहद दिलचस्प है। पार्टी में बहुगुणा परिवार यानी रीता बहुगुणा जोशी और अशोक वाजपेयी कभी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे, लेकिन आज दोनों ही लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी से इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले नंदगोपाल नंदी भी इस समय राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं। 1952 से लेकर 1971 तक लगातार चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद में आखिरी चुनाव 1984 में जीता था, जब अमिताभ बच्चन ने लोकदल उम्मीदवार और रीता बहुगुणा जोशी के पिता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। समीर आत्मज मिश्र, BBC प्रयागराज।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण सूचना नोट कर लें। 19 अप्रैल से यानी शुक्रवार से नमस्कार भारत कार्यक्रम 9410 किलोहर्ट्ज की बजाय 9890 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुसलमान दंपति की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने मस्जिदों में औरतों के जाने और पुरुषों के साथ बराबरी से नमाज अदा करने का हक मांगा है। याचिकाकर्ता दंपति के वकील ने BBC को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तब खटखटाया जब एक मस्जिद में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने इसके विरोध में भारतीय संविधान से मिले अधिकारों और सबरीमला मंदिर मामले का हवाला दिया है। BBC संवाददाता संदीप सोनी ने इस्लामी मामलों की जानकार डॉक्टर सैयदा हमीद से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि इस्लाम इस मामले में क्या कहता है।
कभी औरतों के लिए कुरान में न कहीं इस्लाम में औरतों का मस्जिद में आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जब रसूल अल्लाह की जिंदगी में जब वो मस्जिद नबवी उन्होंने बनाई थी, अब तो बहुत आलीशान है वो, उसमें औरतें बराबर आती थीं और रसूल से सवाल करती थीं, क्लैरिफिकेशन मांगती थीं, कुरान की आयतों की एक्सप्लेनेशन मांगती थीं। औरतों का कभी मस्जिद में जाने की कोई ममानियत नहीं, और ये तो अब पिछले समझिए कुछ 20 सालों से मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जो इस्लाम के गेट कीपर्स हैं और जो इस्लाम अपने आप को प्रोफेस करते हैं कि वो इस्लाम के रखवाले हैं, उन्होंने इस तरह से औरतों के हुकूक को खत्म कर दिया है जो कि इस्लाम ने उनको बहुत वाजे तौर पे औरतों को दिए।
डॉक्टर सैयदा हमीद, भारतीय समाज में ऐसा क्या हुआ जो आप बता रही हैं अभी, मुस्लिम महिलाएं मस्जिदों से दूर हो गईं या उन्हें दूर कर दिया गया?
एक ट्रेडिशन है, एक मजहब है। एक ट्रेडिशन है जिसमें खवातीन नहीं जाती मस्जिद, आमतौर से घर में नमाज अदा करती हैं। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, मेरे वालिद भी घर में नमाज पढ़ते थे और मेरी वालदा भी घर में नमाज पढ़ती थी। ये हमारे घर का ट्रेडिशन था। एक जगह जो नमाज पढ़ने की है उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों अपने फर्ज अदा कर सकते हैं, जबकि प्रॉफिट से मस्जिद में नबवी में औरतें आके सवाल और जवाब करती थी, तो फिर इस बात में कसर ही क्या रह गई है? कहीं कुरान में एक लफ्ज नहीं लिखा कि औरतें मस्जिद में नहीं जाएं। औरतों को बिल्कुल आजादी है, वो मस्जिद में जाएं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ें। ये तो धीरे धीरे एक तरह से पेट्रियार्कल स्ट्रैंगल होल्ड हुआ है। मुझे याद है जब मैं वहां जाती थी कश्मीर आज से 20 साल पहले, तो मैं हजरत बल की दरगाह में बिल्कुल आखिर तक चली जाती, और अभी 3-4 साल हुए जब मैं गई तो मुझे वहीं बाहरी के हाथे में रोक दिया गया और मर्द अंदर थे। मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैं समझ नहीं सकती, आप उस वक्त या तो लड़ना भिड़ना शुरू कर दें। तो ये तो ऐसा है कि इस्लाम को, हम ही मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने पे तुले हुए।
डॉक्टर सैयदा हमीद से बात कर रहे थे संदीप सोनी। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब आप किसी मॉल या दुकान में खरीदारी करने गए और सामान रखने के लिए दिए गए बैग के पैसे भी आपकी ही जेब से लिए गए, लेकिन एक खरीदार ने इसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत का रुख किया और उसके बाद क्या हुआ, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी।
किसी शोरूम में सामान खरीदने के बाद जब आप काउंटर पर जाते हैं तो अक्सर कैरी बैग यानी सामान रखने के थैले के लिए 3 से 10 रुपए तक देने पड़ते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के रहने वाले दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने कैरी बैग के लिए 3 रुपए लेने के कारण बाटा कंपनी के खिलाफ जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद दिनेश प्रसाद रतूड़ी के वकील देवेंद्र कुमार ने कहा,
कैरी बैग के चार्जेस थे ना जी, एक तो मैं हमारा था कि वो कैरी बैग के चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, जो बैग था एक तो कैरी बैग होता है वो प्लास्टिक वाला, एक दूसरा, तो वो कह रहे जी हम थोड़ा सा इसलिए चार्जेस लेते हैं, जो उनकी रिप्लाई फाइल करी थी अपोजिट पार्टी की, कि जस्ट फॉर एनवायरमेंट सेफ्टी। बट हमारा ये था कि जब हम इतने का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए।
ये थे दिनेश प्रसाद रतूड़ी के वकील देवेंद्र कुमार। दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने 5 फरवरी 2019 को बाटा के शोरूम से 399 रुपए में जूते खरीदे थे। उपभोक्ता फोरम ने बाटा कंपनी को उन्हें 4000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है, साथ ही 5000 रुपए जुर्माना लगाया है। अधिकतर बड़े ब्रांड उपभोक्ताओं से कैरी बैग के लिए पैसे लेते हैं, इसलिए इस फैसले को उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता पुष्पा गिरिमा जी बेहद महत्वपूर्ण बताती हैं।
जब हम कुछ सामान खरीदते हैं इसका मतलब है वो ऑब्वियसली इसको ऐसे ही हाथ में पकड़ के तो नहीं जा सकते, इसी के लिए बैग देते हैं। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दुकानदार का, इसको कैरी करने के लिए एक कैरी बैग दो, तो उसके लिए पैसा देना ये बिल्कुल गलत है। मतलब जब से पहले वो प्लास्टिक बैग देते थे, जब से ये प्लास्टिक बंद कर दिया और दूसरे बैगों का इस्तेमाल करने लगे, ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है कि एक कंज्यूमर ने ही फॉट फॉर समथिंग लाइक दिस, एंड ये अच्छा है। तो आई होप विद दिस ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट सच प्रैक्टिसेस विल स्टॉप।
अपने फैसले में उपभोक्ता फोरम ने ये भी कहा कि बाटा के कैरी बैग पर कंपनी का नाम लिखा था और ऐसे में बैग के लिए पैसे लेना उपभोक्ता द्वारा अपना प्रचार कराना है। पुष्पा गिरिमा जी मानती हैं कि कंपनियों का इस तरह उपभोक्ताओं से प्रचार कराना गलत है।
ज्यादातर आप देखे तो जो भी दुकानदार पैसा लेके उपभोक्ताओं से ये बैग देते हैं उनका पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है, उनका नाम होता है, वो सब होता है, तो इनका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो कम से कम वो एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्च करना चाहिए, वो भी उपभोक्ता उनसे या कंज्यूमर से नहीं लेना चाहिए।
वहीं बाटा कंपनी ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह पर्यावरण सुरक्षा के मकसद से कैरी बैग पर शुल्क लगाती है, लेकिन उपभोक्ता फोरम का कहना था कि अगर बात पर्यावरण सुरक्षा की है तो कंपनी को बैग मुफ्त देना चाहिए था। उपभोक्ता फोरम ने बाटा कंपनी को सभी ग्राहकों को निःशुल्क कैरी बैग देने का आदेश भी दिया है। कमलेश मठेनी, बीबीसी दिल्ली।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। भूमिका राय तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बताइए भूमिका।
कुलदीप, सबसे पहले दो तस्वीरों का जिक्र करूंगी। एक तो तस्वीर है जिसमें घायल शशि थरूर को मिलने निर्मला सीतारमण अस्पताल गई, और जिसके बाद शशि थरूर ने कहा कि इस तरीके का जो जेस्चर है वो बहुत ही रेयर हो गया, बहुत दुर्लभ हो गया है मौजूदा समय में, और वो अभिभूत हैं निर्मला सीतारमण के व्यवहार से। दूसरी तस्वीर है जिसमें डिम्पल यादव और पूनम सिन्हा हाथ मिलाते हुए खड़ी हैं। आपको बता दूं कि पूनम सिन्हा जो हैं वो सपा में शामिल हो गई हैं,
कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी।
जी, अब उनकी पहचान सपा राजनेता के तौर पर होगी, और उन्हें लखनऊ से टिकट मिलना तय है। पुष्टि नहीं की गई है लेकिन लगभग तय है ये बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है राष्ट्रवाद, जो कि सोशल मीडिया से लेकर हमारी आम बातचीत में भी शामिल हो चुका है, उस पर एक बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये उन्होंने एक चुनावी प्रचार के दौरान दिया कि जिस तरह भारतीय संस्कृति मूल्यों पर हमले के लिए धर्मनिरपेक्षता के अतिवाद रूप को पैदा किया गया, ठीक उसी तरह देशभक्ति को हल्का दिखाने के लिए अति राष्ट्रवाद को गढ़ा गया है। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है चुनावी प्रचार के दौरान। इसके अलावा आजम खां को एक दिन पहले ही 72 घंटे की उन पर रोक लगाई गई थी चुनाव प्रचार के लिए, निर्वाचन आयोग ने लगाया था, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने दोबारा एक ऐसी ही टिप्पणी कर दी गई है जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 24 घंटे के अंदर उन्हें अपना जवाब देना है। उन्होंने कल्याण सिंह जो राज्यपाल हैं उन पर एक अभद्र टिप्पणी की, जिसे कह सकते हैं, उन्होंने बोला कि आपराधिक मामले वाले जो लोग हैं वो संवैधानिक पदों पर हैं। आपके पास
एक, भी एक दैनिक भास्कर में मैं इसी से जुड़ी खबर का जिक्र करता चलूं, धर्म और जाति के नाम पर भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जाहिर किया है, ये दैनिक भास्कर लिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से कि आपकी कार्रवाई देखकर लग रहा है कि आपको आपकी शक्ति वापस मिल गई है। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया भूमिका राय, और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 12 में कल खेले गए एकमात्र मुकाबले में मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रन से हरा दिया। राजस्थान के सामने जीत के लिए 183 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो पूरे 20 ओवर खेलकर 7 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। राजस्थान के राहुल त्रिपाठी ने 50 और स्टुअर्ट बिंदी ने केवल 11 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 33 रन बनाए, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों के सामने ये रन कम साबित हुए। पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने 24 रन देकर 2 और मोहम्मद शमी ने भी 46 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इनके अलावा अपना पहला ही आईपीएल मुकाबला खेल रहे अर्शदीप सिंह ने 43 रन देकर 2 विकेट झटके। इससे पहले पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए। पंजाब के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 52 और क्रिस गेल ने 30 रन बनाए। इसके बाद डेविड मिलर ने केवल 27 गेंदों पर 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन मैच में रोमांच पैदा किया आर अश्विन ने। उन्होंने केवल 4 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 17 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से 164 से 182 रन तक पहुंचा दिया। उनकी ये संक्षिप्त मगर तेज तर्रार पारी राजस्थान की हार की मुख्य वजह बनी। आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की खासियत को बता रहे हैं क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली।
मैं ही क्यों, हर कोई जो क्रिकेट फॉलो करता है उनको मालूम है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो सबसे बड़ी ताकत है वो एमएस धोनी है। चाहे वो विकेट कीपिंग कर रहे हो या पीछे से खड़े हुए कप्तानी कर रहे हो या अपने बल्ले से प्रतिद्वंदियों को छका रहे हो, तो चेन्नई सुपर किंग्स की पहचान हमेशा और हमेशा धोनी के साथ ही रहेगी।
धोनी का जलवा बरकरार है, तभी तो 8 में से 7 मैच जीतकर उनकी टीम चेन्नई अंक तालिका में पहले स्थान पर है।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वादा किया है कि नोट-डाम गिरजाघर आने वाले 5 सालों में दोबारा बनकर खड़ा हो जाएगा, और इतना ही नहीं ये पहले से कहीं अधिक खूबसूरत होगा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज पर कुछ और नए आरोप लगाए हैं। जूलियन असांज 7 साल तक लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में रहे। सूडान में तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आए सैन्य परिषद ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले सरकारी वकील और उनके सहयोगी को बर्खास्त कर दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।